ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय एक समदर्शी भगवान और श्लोक क्रमांक 34। श्री युधिष्ठिर उवाच कीदृश कस्य वाशापो हरिदासाभिमर्शनः अशक्तेय इवाभाति हरेरकान्तिनाभव। श्री युधिष्ठिर उवाच कीदृश कस्य वाशापो हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेय इवाभाति हरेरकान्तिनाभव। श्री युधिष्ठिर उवाच कीदृश कस्य वाशापो हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेय इवाभाति हरेरकान्तिनाभव। दशानुवाद। श्री युधिष्ठिर उवाच महाराज युधिष्ठिर ने कहा कीदृश किस प्रकार का कस्य किसका वा अथवा शापः शाप हरिदास हरि का सेवक अभिमर्शन हराकर अश्रद्धेय अविश्वासनीय इव मानो आभाति प्रकट होता है हरे हरि का एकांतिनाम उनका ना उनका जो श्रेष्ठ पार्षदों के रूप में अनुरुक्त हैं भव जन्म। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिदानंद स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा किस प्रकार के महान श्राप से मुक्त विष्णु भक्त को भी प्रभावित किया किस प्रकार के महान श्राप ने मुक्त विष्णु भक्त को भी प्रभावित किया और किस तरह का व्यक्ति भगवान के भी पार्षदों को श्राप दे सका। भगवान ने भगवान के दृढ़ भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरना असंभव है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तात्पर्य भगवद गीता में 8.16 में भगवान ने स्पष्ट कहा है मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो भौतिक कल्मश से शुद्ध हो चुके हैं और भगवत धाम वापस जा चुका होता है, वह फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। भगवत गीता में अन्यत्र कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। अतएव महाराज युधिष्ठिर आश्चर्यचकित थे कि शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत में लौट सकता है। यह निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरे कृष्ण। श्री युधिष्ठिर वाच, कीदृश वाक् कीदृश कश्य वा शाप हरिदासाभिमर्शन अश्रद्धेय इवा भाति हरेर एकांतिनः भव। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, किस प्रकार के महान श्राप ने मुक्त विष्णु भक्तों को भी प्रभावित किया और किस तरह का व्यक्ति भगवान के भी पार्षदों को श्राप दे सकता है? भगवान के दृढ़ भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरना असंभव है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं आप सब भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ। वास्तव में मैं भी बहुत, यहाँ जो पंजाबी बाग के भक्त हैं, मैं और पूना के डिवोटीज, हम भी बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ग्रीगेशन और ब्रह्मचारी सब मिलके जिस तरह से हर साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और रिकॉर्ड्स इस्टेब्लिश करते हैं, हम भी चाहते हैं कि कहीं उसके पास में आ जाएं। तो अलग अलग आइडियाज़ जिस तरह आप करते हैं, तो हम भी कुछ इम्प्लीमेंट करने का, जैसे रेड लाइट स्ट्रीट लाइट जो होते हैं वहाँ पे, तो इस बारे में हमने किया तो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, और फिर लोगों से कांटेक्ट डेवलप करके बल्क डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी आइडियाज़ हमने यहीं से लिए हैं। तो निश्चित जिस तरह से आप प्रभुपाद की जो महत्वपूर्ण अंग है बुक डिस्ट्रीब्यूशन को कर रहे हैं, उसको हम अपनाने का या आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। और साथ ही में जिस तरह से मैं देखा भी, और मुरली कृष्णपुर से भी सुना है मैंने, कि यहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन ड्यूटी भी बहुत एंथुजियास्टिक है सेवा में अलग अलग, तो वही हम चाहते हैं कि इस तरह से अच्छा है, कॉन्ग्रीगेशन और ब्रह्मचारीज भी डेवलप हो रहे हैं, तो हम भी उस पद चिन्हों पर चल के कुछ कर सकें प्रभुपाद के मिशन में। तो आज मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में यहाँ पर मैं आया हूँ और कुछ सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये श्लोक भी बहुत ही सुंदर है, और देखा जाए युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न हर एक भक्त की जो मनोभावना को व्यक्त कर रहा है। इसके पहले का देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज ये जो प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जो शिशुपाल इतना, हम कह सकते हैं बचपन से ही उसने सिर्फ यही सीखा था कि किस तरह से भगवान का द्वेष करना, बचपन से ही भगवान का द्वेष कर रहा है, लेकिन जब भगवान ने उसका सुदर्शन चक्र से वध किया तो वो भगवान, उसका जो उसकी आत्मा है, भगवान के शरीर में लीन हो गई। इसके विपरीत जो राजा वेण है, जब उसने देखा जाए तो ये भगवान के प्रति ऐसा अपराध कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ, जब वो मारा गया ब्राह्मणों के द्वारा, तो नरक चला गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों की हत्या हुई है लेकिन एक नरक जा रहा है, एक और भगवान के हृदय अपने शरीर में जा रहा है, स्वरूप में मुक्ति मिल रही है उसको। तो उस समय फिर यहाँ पे नारद मुनि बताते हैं कि वास्तव में शिशुपाल, इन्होंने सदैव भगवान का स्मरण किया था, भले ही वो द्वेष के रूप में, लेकिन भगवान का स्मरण किया था, इसीलिए वह भगवान को प्राप्त हुए। लेकिन वेण, वो भगवान से द्वेष कर रहा था लेकिन कभी भगवान का उसने स्मरण नहीं किया, उसे भगवान की स्मृति नहीं थी, इसीलिए वो नरक की ओर गया है। और दूसरा उन्होंने कहा कि शिशुपाल भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये स्वयं भगवान के पार्षद हैं जो इस संसार में आए हैं जब उनको शापित किया गया था। तो ये सुनने के बाद तुरंत युधिष्ठिर महाराज आश्चर्यचकित होते, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए आज का ये प्रश्न उन्होंने पूछा है कि भगवान के भक्तों को क्या कोई शाप दे सकता है, क्योंकि वो तो शुद्ध है सदैव, किसी की कोई शक्ति नहीं है भगवान के भक्तों को शाप देने की। और दूसरा, क्या भगवान के भक्त शाप से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, भगवान उनके साथ हैं, क्या वो शाप से प्रभावित हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता है। इस तरह से ऐसा उन्होंने कहा। और देखिए, अब युधिष्ठिर महाराज इतना इस कथन से प्रभावित हो गए हैं कि युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं मैं आपके शब्दों पर विश्वास नहीं रख सकता, ऐसा हुआ ही नहीं है। यानी नारद मुनि को कोई ऐसा बोल सकता है क्या कि आप झूठ बोल रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को प्रचार किया, ध्रुव महाराज को प्रचार किया, बड़े बड़े महाजन, ये नारद मुनि के द्वारा ही प्रचार हुआ है। लेकिन ये युधिष्ठिर महाराज एक और से बोल रहे हैं कि मैं आपके शब्दों पर विश्वास नहीं रख सकता। जैसे भगवान के वचनों को सत्य वाक कहा गया है या वेद वाक कहा गया है, उसी तरह से भक्तों के वचन भी सत्य होते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं मैं ऐसे इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो वास्तव में युधिष्ठिर महाराज ये नारद मुनि पे अविश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी मनोभावना को व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक भक्त वापस भगवत धाम जाने के बाद भौतिक जगत में कैसे आ सकता है। तो नेचुरली हम भी देख सकते हैं कि जब हम किसी कार्य में अपने आप को शक्ति लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, या कोई विद्यार्थी है वो किसी स्कूल में अगर एडमिशन लेना है तो वो सोचता है कि उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी अगर इस कॉलेज से पढ़ाई किया तो जॉब लगना चाहिए, या फिर ये बिजनेस मैंने लिया है तो इसमें सक्सेस मिलना चाहिए इस तरह से, या ये जॉब लिया है तो इसमें परमानेंट होना चाहिए। हर कोई अपना जो एंडेवर करता है तो वो चाहता है कि वो परमानेंट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो निश्चित ये हमें एक प्रोत्साहन देता है हमारे कार्य को। तो भगवान भी अलग अलग जगह पे ये प्रोत्साहन हमें देते हैं कि आप अगर हमारी भक्ति करोगे तो भगवत धाम जाने के बाद वापस आप नहीं आने वाले, उससे हमें बहुत सिक्योरिटी या फिर सुरक्षा का आश्वासन मिलता है कि हाँ, भगवान की भक्ति करने से जो है हम भगवान के पास वापस चले जाएंगे और उनके साथ उनके लीलाओं में हम भाग लेंगे, ये भक्त को आश्वासन मिलता है। लेकिन ये जो कथन है कि वो वापस आ गए, ये मन को विचलित कर देता है कि ऐसा हो सकता है। तो किसी ने कहा कि जैसे जॉब लग गया है, कभी भी आपको फायर कर सकते हैं जॉब से, ये कंपनी बहुत अच्छा पेमेंट करती है, दूसरी कंपनी सब 40-50 हज़ार तक देती है, लेकिन ये कंपनी 1 लाख देती है, लेकिन कब फायर कर देगी पता नहीं, कौन जाएगा ऐसे जॉब में? बिल्कुल कोई सोचेगा नहीं, नहीं इसके एंट्रेंस के लिए भी नहीं बैठने का है हमको, क्योंकि फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करने का। तो भगवान की भक्ति भी भगवान बताते हैं कि ये ऐसी है कि शाश्वत है, इसका जो फल है वो शाश्वत है, ये भगवान बताते हैं, जिससे कि भक्त पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाए। अभी ये जो कथन है, जो प्रसंग बताया गया है यहाँ पे, ये भागवत के 3रे स्कंद में आता है, जब इस अध्याय का नाम है जय विजय को शापित किया गया चतुष्कुमारों के द्वारा। उस समय ऐसा बताया जाता है कि इसके पहला अध्याय है वैकुंठ लोकों का वर्णन, वैकुंठ लोक का वर्णन, बहुत सुंदरता से वैकुंठ लोक कैसा है, वहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरह से दूसरों को आगे रखते हैं, खुद पीछे रहते हैं, कोई स्वार्थ की भावना नहीं है वहाँ पे। इस तरह से वर्णन करने के बाद कहा कि चतुष्कुमार, जय श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, जय कृष्ण बलराम की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जय। तो वहाँ बताते हैं कि यही जो चतुष्कुमार जो ब्रह्म ज्ञानी थे, वो हर जगह भ्रमण करके उनकी इच्छा हुई कि वैकुंठ लोगों का दर्शन करें, और जैसे ही वो वैकुंठ के द्वार पे आए, तो वैकुंठ के 7 द्वार हैं, तो 6 द्वारों को उन्होंने क्रॉस कर लिया और 7वें द्वार पे जय विजय थे। जैसे ही वहाँ पे आए तो जय विजय ने उनको रोक लिया, उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वैकुंठ जगत शुद्ध भक्तों के लिए है। जो ब्रह्मज्ञानी भी है लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है, जिसने भगवान से अपना प्रेम जागृत नहीं किया है, तो देखा जाए तो उसके लिए ये अनुमति नहीं है कि वो वैकुंठ में प्रवेश कर सके, इसलिए गेट पे ही उनको रोक दिया। अब ये देखने के बाद, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, सब चीज़ों को एक समान देखते थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप भेदभाव कैसे कर सकते हैं, आप कोई क्वालिफाइड है कोई अनक्वालिफाइड, ऐसा कैसा देख सकते हैं। क्योंकि आप तो वैकुंठ में हैं, शायद आप गलत जगह पे आ गए हैं, इसलिए हम आपको शाप दे देते हैं। और कहा कि हम आपको शाप देते हैं कि तुरंत आपका इस पृथ्वी लोक पे पतन हो जाए, क्योंकि आपकी बुद्धि ये भौतिक है, इसलिए भौतिक जगत में आप जाइए। और ये जैसे ही सुना तो यहाँ पे हम जय विजय की भी महानता को देख सकते हैं कि तुरंत उनके चरणों में वो गिरे और उनसे उन्होंने कहा कि अगर ये आप हमें शाप देते हैं कि हम भौतिक जगत में हमारा पतन हो जाए, लेकिन कृपया करके एक आशीर्वाद दीजिए कि हमें भगवान का विस्मरण कभी ना हो, सदैव भगवान का हमें स्मरण रहे। इस तरह से देखा जाए तो जय विजय में इतनी शक्ति थी कि उनके ऊपर ये चतुष्कुमार का शाप कुछ भी प्रभाव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे, शुद्ध भक्त पे क्या प्रभाव करेगा ये शाप। और ये शाप देने के कारण ही जो चतुष्कुमार है उनको शाप लग जाता देखा जाए तो, लेकिन इनको कुछ होता नहीं, ये भगवान के भक्तों की शक्ति है देखा जाए। लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, उस शाप को। और ये जब समाचार मिला तो भगवान तुरंत वहाँ दौड़ के आए लक्ष्मी जी के साथ, और फिर बहुत सुंदर संवाद होता है। भगवान कहते हैं चतुष्कुमारों से कि वास्तव में ये मेरे पार्षद हैं, और इसीलिए इन्होंने जो अपराध किया है वो मैंने अपराध किया है। वो ब्राह्मण तो इतने श्रेष्ठ होते हैं और ब्राह्मणों के प्रति अपराध कर रहे हैं, तो ये अपराध वास्तव में क्योंकि मेरे पार्षद ने किया है, इसके लिए मैं अपने हाथ दोनों, ये दोनों पार्षद मेरे दोनों हाथों के समान हैं, तो मैं अपने दोनों हाथ इसके लिए काट देता हूँ। उन्होंने कहा कि वास्तव में जो लक्ष्मी जी हैं वो सदैव मेरे चरणों में रहती हैं, क्योंकि ये चरण उसके कारण जो हैं ये चरण बहुत पवित्र हैं, और वो इस चरणों में इसलिए रहती क्योंकि ये चरण पवित्र हैं। और ये चरण पवित्र क्यों हैं? क्योंकि ये चरण जो हैं वास्तव में जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोगों के द्वारा ये पूजे जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि इसीलिए गंगा भी पवित्र हो गई है। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि वास्तव में जो ब्राह्मण हैं, ये जो भोग लगाया जाता है, यज्ञ में आहुति चढ़ाई जाती है अलग अलग सामग्रियों की, वो खाने में मुझे इतना आनंद नहीं आता है जितना ब्राह्मण जो हैं उनको प्रसाद दिया जाता है, वो जब ब्राह्मण स्वीकार करते हैं उसमें मुझे अधिक आनंद आता है, क्योंकि वो मेरा मुख है। इस तरह से अलग अलग तरह से इस तरह वो ब्राह्मणों का, क्योंकि चतुष्कुमार ब्राह्मण थे, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण, इस तरह से वो गुणगान करते हैं। और ये गुणगान सुनने के बाद आप भी भागवत में पढ़ेंगे तो भगवान गुणगान किए जा रहे हैं, लेकिन ये चतुष्कुमार बहुत डर रहे हैं ये सुन के, क्योंकि उनको लग रहा है कि भगवान क्या कह रहे हैं, ये गुणगान कर रहे हैं या हमको डांट रहे हैं। क्योंकि एक और बोलते हैं कि ब्राह्मण तो बहुत महान है, मैं इनकी भी पूजा करता हूँ। हाँ, वो कहते हैं कि मेरे चरण भी इतने क्यों महान है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों की पूजा करता हूँ। तो कह रहे कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की मैं पूजा करता हूँ, यानी ब्राह्मणों को उन्होंने अपने से अलग कर दिया, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि जो ये मेरे पार्षद है वो मेरे दो हाथों के समान है जिनको मैं काट सकता हूँ, यानी उनको उन्होंने अपना बना लिया। तो ये प्रताड़ना ही हुई देखा जाए तो। और वो कह रहे हैं कि आप मतलब इतने महान हैं लेकिन ये मेरे पार्षद हैं, यानी इनडायरेक्टली वो बोल रहे कि हे मूर्खो, आपको इतना समझता नहीं है क्या कि आप मेरे पार्षदों को शाप दे रहे हैं, आपका क्या होगा। तो ये सुन के और डर गए जो है चतुष्कुमार। और फिर बाद में ये बोल रहे हैं कि गंगा जो है, मैं ब्राह्मणों का स्मरण करता हूँ, इसके कारण लक्ष्मी जी मेरे चरणों में वास करती है और मेरे चरण पवित्र हो गए और गंगा जी पवित्र हो गई हैं। तो ये तो एक अट्टहासी हो गया और कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान के चरण तो वो साक्षात पवित्र है, ब्राह्मणों का स्मरण करने से थोड़ी ना पवित्र हुए हैं। वास्तव में ब्राह्मण अगर भगवान के चरणों में गिरते तो वो पवित्र हो जाते हैं। इस तरह से, या जब वो कह रहे हैं कि मुझे तो भोग लेने में कोई रुचि नहीं है लेकिन मुझे आनंद होता है कि ब्राह्मण जब भोजन करते तो मुझे आनंद होता है, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों को खाने में बहुत आनंद आता है, तो हम सोचते ठीक है आप खाओ और खुश रहो। तो इस तरह से वो ऐसा बोल रहे हैं। तो ये जब पूरा सुना तो चतुष्कुमार बहुत डर गए, और फिर वो श्लोक बोलते हैं कि हे भगवान, हमने हमारी मूर्खता में जो शाप दे दिया है, हमें पता नहीं वो सही है या गलत है, तो चाहिए तो आप भी हमें कुछ शाप दे सकते हैं। इस तरह से एकदम क्लियरली उन्होंने बोल दिया, क्योंकि उनको पता चला कि ये बहुत गंभीर अपराध किया है उन्होंने, वैष्णव के प्रति उन्होंने कुछ शाप दे दिया है। लेकिन वैष्णव की महानता, यानी उन्होंने उसको एक भगवान की कृपा समझ के उसको स्वीकार कर लिया, और भगवान की भक्ति का और एक अवसर समझ के वो स्वीकार किया है। फिर भी मन में ये प्रश्न आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान के भक्त जो हैं फिर भी उनको कोई शाप देके उनका भौतिक जगत में कैसे आ सकते हैं, जबकि यहाँ पे प्रभुपाद भी तात्पर्य में कहते हैं कि माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार जब हम आध्यात्मिक जगत में वापस जाते हैं तो पुनर्जन्म हमारा होता ही नहीं है संसार में। और यहाँ दूसरा श्लोक, जन्म कर्म चमय दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। त्यक्त्वा देहम, इस देह को जब हम छोड़ के जाते हैं, नैति मामेति, मेरे पास आ जाते हैं, इस संसार में नहीं आते हैं, इस तरह से। और फिर जो 15वां अध्याय है उसमें भी भगवान बताते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममः। न तद्भासयते सूर्यो, ऐसा जो वैकुंठ जगत है जहाँ पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्र की आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता नहीं है, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ पे जाने के बाद वापस जीवात्मा इस संसार में नहीं आता है, न निवर्तन्ते तद्धाम परमं, मेरा धाम ऐसा है। तो भगवान अलग अलग जगह पे, अलग अलग शास्त्र में, यहाँ पे तो सिर्फ गीता से ही हमने 3 श्लोक कोट किए हैं या प्रभुपाद ने कोट किए हैं, तो अलग अलग शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है। भगवान इस तरह से आश्वासन देते हैं हमें कि जब जीवात्मा अपने संबंध को पुनर्स्थापित कर देता है या पुनर्जागृत करता है, भगवत प्रेम हमारा जागृत हो जाता है, और जब हम हमारा इस संसार का जो समय है वो पूरा करके भगवत धाम जाते हैं, तो इस संसार में वापस हम नहीं आते हैं, ये भगवान स्पष्ट करते हैं। तो फिर ऐसा प्रश्न उठता है कि फिर वो क्यों आए, तो इसमें आचार्यगण विशेषकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये स्पष्ट करते हैं कि क्या हुआ, क्यों ये जो है जय विजय वो इस संसार में आए। तो वहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में भगवान के भक्त सदैव भगवान की सेवा में इतना रत रहते हैं कि उन्हें भगवान की प्रसन्नता के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। वो अपने जीवन में कितना दुख भी सहन कर सकते हैं, अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां भी सहन कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान के एक विचार भी भगवान को दुख का हुआ या भगवान में एक कमी भी उनको महसूस हुई तो वो कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। तो जय विजय जब वैकुंठ जगत में जो द्वार है वहाँ पे खड़े थे तो उन्हें ये स्मरण हुआ कि भगवान तो पूर्ण है, स्वयं पूर्ण, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन एक कमी है कि इस वैकुंठ जगत में जहाँ पे सब भगवान के पार्षद हैं, सब भगवान के भक्त हैं, सदैव भगवान के आज्ञा का पालन करते हैं और वो तत्पर रहते हैं कि भगवान ने जो भी बताया वो सेवा करेंगे, तो ऐसे वैकुंठ जगत में कभी ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान वीर्य रस का आस्वादन करें, भगवान युद्ध करें। कोई भगवान से युद्ध इस संसार में कर ही नहीं सकता है वैकुंठ जगत में। तो भगवान जो स्वयं पूर्ण है उन्हें युद्ध का आस्वादन कैसे हो सकता है इस वैकुंठ जगत पे? तो भगवान में ये कमी रह गई है कि वो स्वाद भगवान को नहीं मिल पा रहा है, एक युद्ध का स्वाद नहीं मिल पा रहा है। तो ये जब जय विजय को स्मरण हुआ तो जय विजय से रहा नहीं गया कि भगवान में ये कैसे कमी हो सकती, उनको ये रस का भी आस्वादन होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कहा, भगवान आप तो वरद राज है, वरद श्रेष्ठ हैं, आप सब भक्तों को वरदान देते हैं, इसीलिए हमारी ये इच्छा है कि हमसे ये देखा नहीं जा सकता है कि आप में कोई कमी हो, आप तो स्वयं पूर्ण हैं, आप इस रस का आस्वादन नहीं कर पा रहे, ये हमसे देखा नहीं जा सकता है, इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इस इच्छा को पूरा कर दीजिए कि हम आपको ये सुख प्रदान कर सकें कि आप हमसे युद्ध करें। तो जब भगवान ने यह सुना, लेकिन ये जो वीर रस का आस्वादन तो आध्यात्मिक जगत में नहीं हो सकता है, ये भौतिक जगत में ही होगा, क्योंकि भगवान से कोई आध्यात्मिक जगत में द्वेष करेगा नहीं, और बिना द्वेष किए लड़ाई तो हो नहीं सकती है, उसके लिए द्वेष चाहिए। तो फिर जब भगवान ने इस तरह से जय विजय की इच्छा को सुना, तो वास्तव में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जय विजय के आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो सही से चाहते थे कि भगवान को इस रस का आस्वादन हो। तो भगवान ने फिर उनकी इच्छा को पूरा किया, और उन्होंने ये अरेंज करवाया कि चतुष्कुमार आए और वो जो है क्रोधित हो जाए, क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से क्या कभी जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति है वो क्रोधित हो सकता है क्या? वो क्रोधित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए सब चीज समान है, तो क्रोधित भी नहीं हो सकता है। तो वो कैसे क्रोधित हो गई, वो भी प्रश्न पड़ सकता, तो उसका उत्तर भी यही है। तो भगवान ने उनमें क्रोध उत्पन्न किया और उनके द्वारा ये शाप बुलवाया, जिसके द्वारा जय विजय जो है इस संसार में आएंगे और भगवान उसका रस का आस्वादन करेंगे। इस तरह यानी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फिर इसके द्वारा भी बताते हैं कि देखिए भगवान का भक्त अपनी इच्छा के बिना इस संसार में नहीं आ सकता है, या एक भगवत धाम जाने के बाद वो इस संसार में नहीं आएगा, अगर आ भी गया तो भगवान की सेवा के लिए आता है, प्रचार कार्य के लिए आता है। एक साधारण व्यक्ति या बद्ध जीव जो प्रकृति के तीन गुणों के अधीन है, इस रूप में वो इस संसार में नहीं आता है। और अगर हम मतलब एक भौतिक किस तरह से भगवत धाम से हम वापस आ जाएंगे ऐसा विचार भी करें, तो हमारे साक्षात्कार के परे है ये, हम तो शास्त्र से सुन के समझ सकते हैं, लेकिन एक हमारा व्यावहारिक अगर अनुभव देखा जाए इस संसार में भक्ति के रूप में, तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल कथन सत्य है। जैसे हम अगर भक्ति को स्वीकार करते हैं तो भी भक्ति से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, भगवान इतना अरेंजमेंट कर देते हैं कि कुछ भी हो जाए भक्ति से बाहर ना निकल पाए हम, यानी भक्ति से भगवान हमको गिरने भी नहीं देते, तो वैकुंठ जगत से क्यों गिरने देंगे। तो चैतन्य चरितामृत में तो भगवान एकदम बोल ही देते हैं, चैतन्य चरितामृत में भगवान कहते हैं कि कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागी ए बड़ा मूर्ख, ए मूर्ख विषय के न दीबा स्व चरणामृत दीबा विषय भुलाई बा। तो चैतन्य महापुरुष स्वयं कह रहे हैं, तो कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, तो बोल रहे हैं कि ये कैसा है, मेरा भजन कर रहा है और साथ में इंद्रतृप्ति का विचार रख रहा है कि उसे भक्ति भी करनी है इंद्रतृप्ति भी करनी है, और कह रहे अमृत छाड़ी विष मागी, मेरी भक्ति में अमृत है उसको छोड़ के ये विष की कामना कर रहा है, यही बड़ा मूर्ख, ये तो मूर्ख है लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं, बोल रहे यही मूर्ख विषय के ना दीवा, मैं इसको विषय नहीं देने वाला, भले ये मांग भी रहा है तो क्या करूंगा, स्व चरणामृत दिया विषय भुलाई हुआ, अपना चरण का अमृत दे दूंगा, भक्ति का थोड़ा एक्सटेसी दे दूंगा और ये विषय सुख को भूल जाएगा। इस तरह से तो ये भगवान की करुणा है या भक्तों के ऊपर ये भगवान की कृपा है, भक्त वात्सल्य है। घर में भी देखते हैं कि अगर माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, अगर कोई बच्चे गलत हट करते हैं कि अभी देखेंगे कोई मिर्ची पड़ी है या कुछ ऐसा पड़ा है, बहुत पीछे पड़ा है कि नहीं माँ ये चाहिए ये चाहिए, या कोई दवाई होती है माँ ये चाहिए ये चाहिए, तो माँ क्या करती है, थोड़ा खिलौना दे देगी या कोई मिठाई दे देगी, किसी तरह से वो दे के बच्चे को भुला देती है कि चलो ये मांगना भूल जाएगा वो, फिर अपने खेल में मस्त हो जाता है। इस तरह से भगवान, इसी तरह से भक्त जब भौतिक इच्छाएँ आकांक्षाएँ उसकी कामना करता है तो भगवान उसको अपनी भक्ति में और रस दे के उसको भुला देते हैं। यानी भगवान जो है एक तरह से हमारे इंद्रतृप्ति में बाधा डाल देते हैं, ये हमारे लिए खुश खबर नहीं दुख की खबर है कि भक्ति में आने के बाद इंद्रतृप्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि इंद्रतृप्ति जैसे ही व्यक्ति करने जाता है कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन उसको आ ही जाता है। कोई भी चीज हो, अगर बहुत इच्छा हो गई कि भाई इसका आस्वादन करना है, तो जब तक इच्छा है और मन में सपना है उतना ही आनंद मिलेगा, लेकिन जब लेने के लिए गए तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा और फिर हम बोलेंगे देखो भाई, जो जैसे एक उदाहरण आता है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि एक ब्राह्मण था, या ब्राह्मण नहीं एक हिंदू था, तो एक बार वो ऐसा ही सफ़र कर रहा था और करते करते पास पड़ोस में कोई उसे धर्मशाला या मंदिर दिखा नहीं तो बहुत भूख लग गई उसको, बहुत भूख लग गई। अभी सोचा क्या करूँ, इतनी भूख लग गई कि वो अभी ऐसे बेहोश होने वाला था, तो आजू बाजू में कुछ नहीं दिख रहा था। बहुत देर के बाद उसको एक जो है घर दिखा, लेकिन उसको पता चला कि एक मुसलमान का घर है। तो उस समय तो बहुत संकीर्ण बात था कि अगर मुसलमान को देख भी लिया तो स्नान करना है, परछाई भी पड़ी तो गंगा में स्नान करना है, नहीं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और अगर उसके घर खा लिया तो फिर तो बस खत्म, जीवन खत्म। लेकिन उसने सोचा कि मरने से तो अच्छा है कि कुछ खा ले। तो फिर उसके घर में प्रवेश किया और उसने कहा बहुत भूख लगी, कुछ दीजिए हमको। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेहमान को तो नहीं बोल नहीं सकते, वो उनमें भी सदाचार था, इसलिए जो जितना कुछ घर में था वो लेके आ गए। इसने भर जितना है, जितना दिया था उतना खा लिया, लेकिन वो थोड़ा सा ही था इसलिए पेट उसका भरा नहीं। और उसने कहा तो कुछ भी नहीं है ये, तो और लाइए और लाइए, बहुत भूख लगी है। वो फिर जो मुसलमान है उसने कहा देखिए भाई, हमारे घर में इतना ही था, और कुछ तो है ही नहीं। तो बोलने लगा कि जात भी चले गई और पेट भी नहीं भरा। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं कि थोड़ा सा इंद्रतृप्ति का डोज दे देते हैं और फिर बाद में इतना फ्रस्ट्रेशन देते कि हम सोचते हैं अभी भक्ति भक्ति की भावना भी चले गई और इंद्रतृप्ति की इच्छा भी पूरी नहीं हुई। फिर हम सोचते हैं अगली बार तो नहीं करना है, अगली बार थोड़ा टॉलरेट कर लेंगे लेकिन इंद्रतृप्ति नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आता उसका। इस तरह से यानी भगवान इतना हमारे भक्ति को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। कभी कभी कोई अच्छा आइटम बनता है, सुना है कि भाई अभी बहुत बढ़िया स्वीट राइस बना है या थोड़ा आइसक्रीम बना है, तो ऐसा लगता है कि नहीं बढ़िया है, उसका सपना आता है, देखते हैं तो पता चला है कि कैसा होगा, क्या होगा, अनलिमिटेड होगा और क्या टेस्ट होगा। फिर बैठ जाते हैं लेने के लिए, कभी कभी तो सोचते हैं प्रभु जी अभी भक्त लोग देखते हैं कि सर्विंग के लिए भक्त कम है, तो कोई भक्त हमारी तरफ देखते हैं तो लगता है कि नहीं हमें शिष्टाचार के अनुसार उठ के थोड़ा सेवा करना चाहिए, तो सर्विंग करने लगते हैं। पता लगता है कि पहली सर्विंग हो गई, दूसरी सर्विंग हो गई और सब आइटम है, बस वही आइटम खत्म हो गया है। तो लगता है ये क्या हो गया। तो इंद्रतृप्ति की भावना को उस तरह निकाल देते हैं, या होता भी है तो पता चलता है कि पहले भक्तों को अनलिमिटेड मिल गया, हमको थोड़ा लिमिटेड मिल गया। इस तरह से या ठीक है भाई खत्म भी हो गया लेकिन भक्तों ने बना दिया, लेकिन फिर बना के मिल भी गया तो लगता है लेकिन वो नहीं मिला। इस तरह से ये अनुभव हमारे आते हैं वास्तव में रोजमर्रा के जीवन में, तो फिर लगता है कि नहीं इंद्रतृप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए, सेवा की इच्छा रखो बस। इस तरह क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हमारा जो चेतना का स्तर है वो नीचे ना जाए। इस तरह भगवान यानी हमारे इस जीवन में जब हम भौतिक संसार में हैं, हम मन इंद्रियों से लड़ रहे हैं, तभी भी हम भगवान इतना हमारे लिए चिंता करते हैं कि किस तरह से हमारी जो भावना है चेतना उसका स्खलन ना हो, वो आगे बढ़ते जाए। इस तरह तो वास्तव में बड़ा रिस्क है देखा जाए तो, है कि नहीं। यानी अगर किसी को ट्रबल देना है तो संबंध कभी भी टूट सकता है इस तरह से, लेकिन भगवान इतना बड़ा रिस्क लेते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि नहीं मैं भक्तों को जब भी इंद्रतृप्ति की इच्छा करेंगे परेशान करूंगा उनको और दूसरी ओर अपनी भक्ति दे दूंगा, भले ही संबंध में रिस्क हो, क्योंकि वो उनको हमारे से इतना ज़्यादा कृपा है, करुणा है कि भक्ति बनी रहे और साथ में एकदम भक्ति का बौछावर या पूरा नौछावर कर देते हैं हमारे ऊपर भक्ति का, कि पूरा भक्त ओतप्रोत हो जाता है उस भावना से और वो सोचता नहीं भगवान के चरणों के बिना मेरा और कोई स्थान नहीं है, भगवान इतने कृपालु हैं कि देखिए मेरे जैसा हटी प्राणी जो जन्म जन्मांतर तक इंद्रतृप्ति में ही लगा हुआ था, अभी बहुत मुश्किल से भक्तों के इतने मेहनत से और भगवान की इतनी कृपा से भक्ति में आया हुआ है, फिर भी ये इंद्रतृप्ति की इच्छा इतनी प्रबल है कि इतनी कृपा मिली है, इतना प्रसाद मिला है, भक्तों का इतना स्नेह मिला है, सब कुछ इतनी सुविधाएं मिली हैं, ऐसा वातावरण मिला है, ऐसे भक्तों का संग मिला है, इतना सब कुछ होने के बाद भी मन बार बार विषयों की ओर भागता है, ये कैसा है मेरा स्वभाव, और मैं इतना पागल हो जाता हूँ कि फिर भी उन विषयों की ओर जाने की चेष्टा करता हूँ, लेकिन भगवान इतने कृपालु है कि उसमें भी बाधा डाल देते हैं और अपनी कृपा की बौछावर कर देते हैं, या तो वो कुछ ऐसा अनुभव दे देते हैं हमें भक्ति में जिससे कि तुरंत हमारा मन उस भौतिक विषय से अलग हो जाता है, या कोई सेवा कर रहे हो उसमें इतनी सफलता दे देते हैं कि उससे इतना प्रोत्साहन आ जाता है कि मन सोचता है छोड़ो ये क्या उस किस चीज़ में पड़ा हूँ मैं, इतनी सेवा कर सकता हूँ भगवान की और ऐसा क्यों कर रहा हूँ। या किसी भक्त का संग दे देते हैं जिससे कि तुरंत ऐसा उत्साह आ जाता है, या फिर हम जब शास्त्र पढ़ते हैं शास्त्र से ऐसा वाक्य प्रकट हो जाता है हमें कि ऐसा लगता है कि देखिए भगवान कितने कृपालु हैं। तो अलग अलग रूप से भगवान प्रकट हो जाते हैं हमारे सामने और हमें हमारी रक्षा करते हैं वो। तो इस तरह भगवान तत्वर हैं सदैव। तो क्या फिर कभी वैकुंठ जगत से भक्त का वो स्खलन होने देंगे जो इस संसार से इतना अथक परिश्रम करके, या भगवान के शब्दों में उसने इतना त्याग किया है, इतने भौतिक विषयों का त्याग किया है। कई बार उसका ये जो सनातन गोस्वामी बताते हैं ये बृहद भागवत आमृत में, जब गोप कुमार इस संसार से भक्ति करके वापस गोलोक वृंदावन गए थे, तब कृष्ण साक्षात गोप कुमार को बोलते हैं, वो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है जब गोप कुमार को देखते हैं। वो सब वो कृष्ण भगवान वो खेल रहे थे अपने गोपों के साथ, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि गोप कुमार अभी वापस आ गए हैं, वो खेल को छोड़ के सीधा भागते हैं और गोप कुमार का आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि आप आ गए, मैं कितने समय से आपकी राह देख रहा था, आपने मेरे मुझे प्राप्त करने के लिए कितना कष्ट लिया है, इस भौतिक जगत में कितने सारे सुखों को आपने त्याग किया है, कितने सारे उलहाना को आपने स्वीकार किया है, कितने कष्टों को आपने स्वीकार किया है सिर्फ मेरी प्राप्ति के लिए। ये विचार करके भगवान के आंखों में आंसू आ जाता है। तो जब भक्त भगवान को इतना प्रिय हो गया है तो क्या भगवान उसको वापस छोड़ेंगे इस संसार में, ये प्रश्न उठता है। तो यही एक सुंदर इसका जो विवरण है वो श्रीमद् महाभारत में भी आता है। महाभारत में तो ऐसे अनेक अनेक प्रसंग हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि भगवान किस तरह से भगवान भक्तों की भक्ति की इच्छा को की रक्षा करते हैं। तो एक ऐसा ही प्रसंग जो है भीष्म के जीवन से आता है। जैसे जो भीष्म पितामह हैं अभी वो युद्ध कर रहे थे, लेकिन जो महाभारत का युद्ध बहुत साधारण नहीं था देखा जाए तो, क्योंकि भीष्म पितामह उन्होंने पहले ही दुर्योधन को कहा था कि भले ही हमारी कितनी भी सेना हो विजय कदापि संभव नहीं है हमारे लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं पांडवों के साथ है, वहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर है जो धर्म के परायण हैं, और भीम और अर्जुन इतने कुशल योद्धा हैं और वो भी धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो हम जीत नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी जब दुर्योधन बहुत अड़े हुए थे युद्ध करने के लिए, तो अभी युद्ध चल रहा था, तो युद्ध का 9वां दिन था, एकाएक जो है दुर्योधन भीम के सामने आ गए, और जब भीम ने देखा तो भीम बहुत क्रोधित हो गया। उसको पूरा जो असत सभा जो है उसका स्मरण हुआ कि किस तरह से दुर्योधन ने द्रौपदी जो है उनका वस्त्र हरण करने की चेष्टा की, तो एकदम आग बबूले हो गए भीम। और भीम जो युद्ध करते थे तो उनको देख के ही लोग डर जाते थे, तो विशाल का एक पर्वत जैसा उनका शरीर था और गदा सदैव खून से लथपथ रहती थी और लोगों के मांस से लथपथ रहती थी उनकी गदा, और जब वो चलते थे तो पूरा जो धरती वो हिलता था, और जब हंसते थे तो वहाँ पे जो हथनियाँ थी उनका गर्भपात हो जाता था, इस तरह से उनका हंसना होता था। और गदा लेके लड़ने के लिए जाते थे, जो योद्धा सामने आता था वो रथ पे हो या हाथी पे हो या घोड़े पे हो, वो देख के डर जाता था, और सीधा वो जाके जब कोई आह्वान देता था तो सीधा वो गदा लेके जाते थे, और गदा लेके सीधा हाथी के सर पे मारेंगे तो सर के दो टुकड़े हो जाते थे, रथ पे मारते थे रथ तहस नहस हो जाता था। कोई योद्धा भले ही महारथी भी हो बाण मार रहा हो, भीम को कुछ नहीं होता था, वो सीधा हाथी को पकड़ के सूंड हाथ से ही खींच देते थे और सूंड निकल जाती थी। योद्धा का हाथ ऐसे ही खींचेंगे हाथ निकल जाएगा, सर पे मारेंगे वो जमीन के अंदर चला जाएगा, इस तरह से। और जब हंसते थे तो फिर वो हंसना डर जाते थे लोग, इस तरह से ऐसा भीम। तो भीम ने जैसे ही दुर्योधन को देखा तो क्रोध आ गया उनका, और उन्होंने कहा कि अभी मैं आपका अंत करूंगा, और तुरंत फिर दुर्योधन ने उनको 3 बाण मारे, उनके छाती पे लगे लेकिन भीम को कुछ नहीं हुआ, तुरंत उन्होंने बाण निकाले, 10 बाण मारे उन्होंने, ये दुर्योधन के छाती में मारे, और कुछ बाण मार के उनके सारथी को मार दिया, सारथी ने जो उनका झंडा है उसको तोड़ दिया, उसके उनके मुकुट को उड़ा दिया, और फिर और 25 बाण मारे उनके छाती पे। ये देख के जो 17 दुर्योधन के भाई थे वो सामने आ गए युद्ध करने के लिए, और जैसे ही भीम ने 17 भाइयों को देखा, बस वो खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने वचन लिया था कि मैं युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के सब पुत्रों का वध करने वाला हूँ। सीधा बाण लेके कुछ ही क्षणों में उन्होंने पूरे 17 के 17 पुत्रों को मार डाला। और जब दुर्योधन ने देखा तो बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन और कुछ बाण मार के उन्होंने तुरंत दुर्योधन को धराशायी कर दिया रथ के ऊपर, और पास में आके मारने ही वाले थे, लेकिन सारथी जो है दुर्योधन का रथ लेके वापस कैंप में चला गया। अभी दुर्योधन कुछ समय के बाद मूर्छा से बाहर आए और बहुत डिप्रेशन में चले गए थे दुर्योधन, क्योंकि सामने वो भी मूर्छित हो गए, सामने 17 भाइयों को मार दिया है, और दुर्योधन ने कुछ एक दो दिन पहले और 10 भाइयों को मार डाला था। तो इस तरह से सोच रहे कि ये क्या कर रहा है भीम, इतने ऐसे जैसे कोई ऐसे प्रभुपाद भी गीता में बताते ना कि कोई जैसे ऐसा घास उखाड़ के फेंक देता है, वैसे मेरे भाइयों को ऐसे उखाड़ के फेंक रहा है। तो साथ में बहुत डिप्रेशन आया उनको, और फिर कर्ण भी आए, कर्ण ने बोला कि कैसे आपकी अवस्था हो गई है, इतना दिन हो गया है अभी भी कुछ हो नहीं रहा है। उन्होंने बोला हाँ शायद ये भीष्म ठीक से लड़ नहीं रहे, देखिए इतना दिन हो गया, 9 दिन हो गए हैं, अभी तक पांडव में एक भी कोई मरा नहीं भीष्म के होते हुए। तो कर्ण ने कहा अगर आप चाहते हो तो मैं सेना का नेतृत्व करता हूँ, आप बस भीष्म को बोले कि आप पद से हट जाइए। कर्ण का भी थोड़ा मतभेद था भीष्म के साथ, इसीलिए वो चाहते थे इस तरह। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अभी भीष्म पितामह के पास जाता हूँ और उनसे बोलता हूँ। तो भीष्म के पास गए और भीष्म को कहा कि देखिए, पैर पड़ के रोने लगे और कहा कि ये क्या हो रहा है, 9 दिन हो गए लेकिन अभी तक पांडवों का वध नहीं हुआ, किस तरह से चलेगा ये। तो भीष्म ने फिर कहा कि यह असंभव है। उन्होंने कहा कि ये सब धर्मपरायण है, भगवान भी इनके साथ हैं, तो इनका युद्ध में पराजय हो नहीं सकता है। तो दुर्योधन कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप इतने पराक्रमी हैं कि आपके सामने गंधर्व भी टिक नहीं सकते, ये तो मनुष्य है, इनको मारने में क्या जाता है आपका, आप मार सकते हैं, लेकिन शायद आप पक्षपात कर रहे हैं, उनके प्रति आपका स्नेह ज़्यादा है इसलिए आप युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही भीष्म ने यह सुना और फिर कहा तो अगर ऐसा है तो आप जो सेना का नेतृत्व कर रहे हैं उस पद से हट जाइए, मैं कर्ण को वहाँ रखता हूँ। तो देखा जाए तो भीष्म ने शुरुआत से पहले दिन से पूरे क्या कहते हैं कोई पक्षपात से नहीं, पूरे शक्ति से युद्ध किया था। हर रोज वो 10,000 लोगों को मार रहे थे, सिपाहियों को, इस तरह से ये उनकी पूरी शक्ति से कर रहे थे वो। तो जब ये सुना तो बहुत दुख लगा उनको, और उन्होंने सोचा कि किस तरह से, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, मैंने तो पूरी शक्ति से युद्ध किया है। और वो मन में सोचने लगे कि क्षत्रिय का कर्तव्य कैसा होता है, कर्तव्य के लिए कभी कभी अपने अपनों को ही हमें दुख देना पड़ता है, या क्षत्रिय को अपनों को ही कभी कभी मारना पड़ता है कर्तव्य के लिए। लेकिन वो सोचने लगे कि अगर मैं अपना कर्तव्य करता हूँ क्योंकि भगवान की इच्छा है तो निश्चित भगवान मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा विचार किया। और फिर तुरंत उन्होंने, हम जानते हैं कि 5 बाण लिए, और बाण लेके उसको उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया और कहा कि ये बाण जो है अभी कल पांडवों का नाश करेंगे। बहुत गंभीर थे वो, और देखने के बाद तुरंत पांडवों ने, दुर्योधन ने सोचा कि पता नहीं ये बाण अगर मन बदल गया, दे दिया तो फिर ले लेंगे वो, पांडवों के पास चला जाएगा, मैं अपने पास रखता हूँ। तो बाण उन्होंने अपने पास रख लिए, और ऐसा होने के बाद फिर भी वचन लेने के बाद भीष्म हंसे, क्योंकि उन हंसने का कारण ये था कि उनको पता था कि जरूर कृष्ण आके कुछ करने वाले हैं इस तरह से। और फिर सुबह उठने के बाद वो गए और दुर्योधन को कहा ठीक है बाण दीजिए, अभी युद्ध का समय हो गया। उन्होंने कहा कि बाण तो है ही नहीं, तो क्या हो गया, कौन आया था, बोले अर्जुन आए थे और बाण मांगे उन्होंने। तो अर्जुन को कैसे पता चला, उन्होंने कहा कि निश्चित है कृष्ण की ही कारनामा है, कृष्ण के द्वारा ही ऐसा हुआ है। और फिर लेकिन फिर भी क्योंकि उनका कर्तव्य था युद्ध करने का, फिर गंभीर हो गए, और गंभीर होकर उन्होंने कहा मैं वचन लेता हूँ। तब उन्होंने कृष्ण को कृष्ण भी नहीं कहा, ये महाभारत में उल्लेख आता है, उन्होंने कहा मैं वचन लेता हूँ आज या तो कृष्ण जो अर्जुन है उसका वध होगा मेरे हाथों से, या इस यादव को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा और अपने भक्त की रक्षा के लिए उसे अस्त्र उठाना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने गंभीरता से कहा, और फिर वो हंसे क्योंकि उनको पता था कि भगवान कुछ ना कुछ कर ही देंगे, लेकिन वो तत्पर थे। लेकिन अभी देखिए उन्होंने तो वचन ले लिया है, लेकिन प्रॉब्लम किसको हो गया, अभी प्रॉब्लम अर्जुन को भी नहीं है क्योंकि वो तो भगवान के भक्त है, प्रॉब्लम भीष्म को भी नहीं है क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, प्रॉब्लम हो गया कृष्ण को क्योंकि उनको दोनों की रक्षा करनी है, और ये तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हो गया अभी देखा जाए तो। तो दसवें दिन का जब युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध उस समय इस तरह से भीष्म युद्ध कर रहे थे कि उनका बाण और धनुष कुछ भी नहीं दिख रहा था, कि हर जगह पे तहस नहस हो रही थी सेना, ऐसे ढेर लग रहे थे शवों के, हाथी हो घोड़े हो महारथी लोग हो सबके ढेर लग रहे थे। ये देखने के बाद एक राजा जो पांडव की ओर से था चिल्लाने लगा, उन्होंने कहा कि किस तरह से ये भीष्म युद्ध कर रहा है, लोगों का हत्या कर रहा है, और तुरंत वो अपनी पूरी सेना को लेके आ गया, 100,000 सिपाही थे उसके साथ। लेकिन कुछ ही मिनटों में भागवत बताया कम से कम 1 घंटे के अंदर सब सिपाहियों के साथ राजा को नष्ट कर दिया भीष्म ने, और ये खून की नदी बहने लगी वहाँ पे पूरी तरह से, हाथी घोड़े लोगों के हाथ पैर सब उस नदी में बहने लगे। और ये देखने का सब सिपाही सब योद्धा सब में हाहाकार मच गया और सब कहने लगे ये सब दुर्योधन के कारण हो रहा है, दुर्योधन के, जोर से बोल रहे थे वो, इस दुर्योधन के इस आसक्ति के कारण आज इतना मारकाट हो रही है। और उनके बोलने का उद्देश्य इसलिए था जोर से कि भीष्म सुनेंगे, भीष्म थोड़ा अपने युद्ध में कम वेग से युद्ध करेंगे। और दुर्योधन ने जब देखा कि सब भीष्म की ओर ऐसा देख के बोल रहे हैं, उसको डर लग गया कि ये फिर अपना आज जो पावर दिखा रहे हैं इतना पावर कभी दिखाया नहीं है, तो शायद पावर कम कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे को फिर आगे कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही भीष्म ने दुर्योधन को देखा तो उन्होंने अपना हाथ हिला के बोला डरिए मत, मैं किसी के वचनों से डर, मेरा जो कर्तव्य है वो किसी के वचनों से अडिग रहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई कुछ भी बोले लेकिन मेरा जो कर्तव्य मैं करूँगा ही, कोई मेरी सराहना करे या निंदा करे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से वो आश्वासन दुर्योधन को देने लगे और तुरंत अर्जुन भीष्म के सामने आ गए। और इस तरह से बताया गया महाभारत में बाणों की न्यौछावर कर दी कि कुछ क्षणों में पूरे अर्जुन के शरीर पे बाण लग गए, कृष्ण के शरीर पे बाण लग गए, रथ पूरी तरह से तहस नहस हो गया, एक तरह से भगवान थे इसलिए रथ बचा था। और कुछ ही क्षणों में अर्जुन और कृष्ण और उनका रथ पूरे सिपाहियों के दृष्टि से ओझल हो गया, बाणों से पूरी तरह से घिर गया। जब सब देखा ये, और प्रॉब्लम क्या हो गया कि जब भीष्म अर्जुन के सामने आ गए तो भीष्म ने तो बाण चलाना शुरू कर दिया, लेकिन अर्जुन ने जैसे ही अपना धनुष भीष्म के सामने लिया फिर उनका हृदय कमजोर पड़ गया, जैसे युद्ध के शुरुआत में हुआ था, यही देखने के लिए कि अर्जुन कितने सक्षम है, भगवान भीष्म और द्रोण के सामने रथ को खड़ा किया था और देख के वो कमजोर हो गए। उन्होंने कहा कि मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, दृष्टे मम स्वजन कृष्ण युद्धम समुपस्थितम, मेरे ही लोग मेरे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं, सिदंती मम गात्राणी मुखम च परिशिष्यति, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, गांडी व समसरते हस्तात, गांडी व हाथ से छूट रहा है, ऐसा हो गया था। यानी उनको लग रहा था ऐसे कैसे कर सकता हूँ, यानी उनकी जो कर्तव्य बुद्धि क्षीण हो गई थी उस समय, हृदय कमजोर हो गया था। फिर भगवत गीता भगवान ने सुनाई, युद्ध क्षेत्र पे 1 घंटा टाइम निकाल के उन्होंने गीता सुनाई, और गीता सुनाने के बाद भी बोल रहे फिर भी आपको कोई डाउट है तो वापस मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कहा कि नहीं नहीं, अर्जुन ने एकदम कह दिया कि नहीं, कि अभी जो है जब मैंने सुना नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा त्व प्रसादात् मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं च, मेरे पूरे मोह नष्ट हो गए हैं, पूरा जो हृदय का कमजोरी चला गया है, स्थितोऽस्मि अब स्थित हो गया हूँ मैं अपने कर्तव्य में, करिष्ये वचनं तव, आपने जो बोला वो करूँगा। भगवान ने बोला लड़ो, लड़ना चालू हो गया। 9 दिन हो गए, 10वें दिन सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक भीष्म सामने आते हैं। अभी भीष्म सामने आ गए फिर प्रॉब्लम आ गया, हार्ट में हार्ट कमजोर हो गया, फिर वो बाण ऐसे देखा हुआ है कुछ कर ही नहीं रहे, अभी पूरा शरीर के ऊपर बाण लग गए हैं, कृष्ण को भी बाण लग गए लेकिन कोई हो ही नहीं रहा उनसे। तो भगवान देख रहे हैं इसको हो क्या गया, अभी वापस गीता बताना पड़ेगा। लेकिन अभी वापस गीता बताने के बाद फिर प्रॉब्लम क्या है कि वापस फिर भीष्म सामने आने के बाद फिर कमजोरी आ जाएगी, और भीष्म ही नहीं द्रोणाचार्य भी है, कल को द्रोणाचार्य सामने आ गए फिर उनको कमजोरी आ जाएगी। तो भगवान ने सोचा ये देखो ये भक्ति में तो फिर इसका डामाडोल चल रहा है, इसको कुछ तो करना चाहिए जिससे कि भक्ति में एकदम पक्का हो जाए कि भाई अभी कुछ भी हो जाए अभी मुझे पीछे नहीं हटना है। तो ऐसा भगवान विचार कर रहे थे, और ये विचार सोच के उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसा करना है जिससे कि वापस अर्जुन अपने इरादे से कभी हटे ना। और ऐसा सोच के भगवान ने ऐसा कार्य किया है जो इस सृष्टि में भक्तों को सदैव स्मरण देता है, भक्तों को सदैव विश्वास देता है, भक्तों को सदैव आनंद देता है। जो स्मरण करके भीष्म अपना देह छोड़ना चाहते थे, ऐसी लीला भगवान ने की। यानी भीष्म के लिए भी वो सबसे परम जो है आनंदप्रद लीला थी। भगवान ने निर्णय लिया कि मुझे सत्य वाक कहा गया है, या शास्त्र में मेरा नाम उत्तम श्लोक कहा गया है। यानी भगवान जो बोलते हैं वही सत्य है, भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है, ऐसी भगवान की ख्याति है। वही भगवान अपने वचनों को जो झूठे हो जाएंगे इसकी भी परवाह नहीं की उन्होंने, और तुरंत रथ से कूदे और एक पहिए को उठाया उन्होंने, और पहिए को उठा के जैसे ही उन्होंने हाथ में ऊपर लिया, इतना क्रोधित थे भगवान। तो जब ये दृश्य सब सिपाहियों ने और सब महायोद्धा थे उन्होंने देखा, उनको ऐसा लगा कि अभी जो सृष्टि के अंत का समय आ गया है, इस तरह से भगवान क्रोधित थे। सब लोगों ने तुरंत अपने हथियार वहीं पे रोक दिए, युद्ध रुक गया वहां पे, सब स्तब्ध होके भगवान को देखने लगे, इस तरह भगवान क्रोधित थे। और उस पहिए को लेके भगवान भीष्म की ओर दौड़ पड़े। तो देखिए, मतलब बहुत घमासान युद्ध चल रहा है, एकाएक युद्ध रुक गया, और सब एक तरफ से पूरा लाखों लाखों सिपाही वो देख रहे हैं भगवान को, और भगवान रथ के पहिए को लेके दौड़ पड़े हैं। और उस समय जैसे अर्जुन ने देखा, अर्जुन का हृदय पूरी तरह से टूट गया, और वो सोचने लगे कि मैं कैसा भक्त हूँ कि मेरा जीवन भगवान की सेवा के लिए लगा है, और मेरे हृदय के कमजोरी के कारण आज भगवान को अपना वचन तोड़ना पड़ रहा है। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, मेरा जीवन भगवान की सेवा के लिए लगा है, मेरे जीवन के द्वारा भगवान का गुणगान होना चाहिए, और आज मैं ऐसा कार्य कर बैठा जिसके कारण भगवान का अपमान हो, संसार बोलेगा कि भगवान अपने वचनों पे टिके नहीं रहते हैं, क्या मुझे अपने आप को भक्त कहलाना चाहिए। इस तरह से पूरी तरह से अर्जुन के हृदय का मंथन हो रहा था, उनको बिल्कुल रहा नहीं गया, पूरी तरह से सोच रहे थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अभी। इस तरह तो हृदय में उन्होंने ठान लिया कि अभी आगे ऐसा कभी नहीं करना है मुझे कि भगवान को अपने वचनों को तोड़ना पड़े, लेकिन अभी मुझे रोकना चाहिए भगवान को। तो वो रथ से कूद पड़े और भागने लगे। वो बोले भगवान, कृष्ण को बोले रुकिए रुकिए, आप कृपया करके आपका वचन आप मत तोड़िए, आपने वचन लिया है कि अस्त्र को नहीं उठाएंगे, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अभी युद्ध करूँगा, आप रुक जाइए। फिर भी भगवान रुके नहीं, भगवान जा रहे हैं। तो अर्जुन कूद पड़े सीधा, और कूद के उन्होंने भगवान की कमर को पकड़ लिया, और फिर भी भगवान अर्जुन को घसीट के लेके जा रहे हैं इस तरह से। तो किसी तरह उन्होंने अपने पैर को जमीन में गाड़ के ब्रेक लगाया फिर भी वो थोड़े देर तक आगे चले, और फिर भगवान रुक गए वहां पे। और भीष्म ने भी ये देख के वास्तव में पूरा अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे, उन्होंने कहा कि भगवान आइए और आप मेरा अंत कीजिए, इससे अच्छी गति और क्या हो सकती कि आपके हाथ से मेरी मृत्यु हो। तो जैसे ये भगवान ने किया, तो वास्तव में भगवान वहां पे फिर गीता का उपदेश दे सकते थे अर्जुन को, या डांट सकते थे, अरे कैसा भक्त है, समझाया था ना गीता आपको, फिर प्रॉब्लम कर रहे हो, फिर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है आपको, बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। भक्त को पक्का होना चाहिए, उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और एक बार ठीक है बाद में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, या फिर पनिशमेंट दे सकते थे भगवान। लेकिन भगवान ने सोचा कि मुझे ऐसा सब करने से अर्जुन वापस स्थित होंगे कि नहीं पता नहीं, भगवान का विचार था कि अर्जुन वापस स्थित हो जाए, इसीलिए फिर भगवान ने ऐसा अपनी ओर से कदम लिया है। देखिए, तो यानी भौतिक जगत में जब हम भक्ति करते हैं, हमारे भक्ति में अगर कोई बाधा आ जाती है, तो भगवान यहाँ तक कि अपने वचनों को भी तोड़ने के लिए तैयार है जिससे कि भक्ति में हमारी वापस हम स्थित हो जाए। तो अगर कोई भक्त वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन चले जाए, तो भगवान कैसे छोड़ देंगे उसको वापस आने के लिए, बिल्कुल नहीं। वो तो अपने प्रेम से इतना भक्त को न्यौछावर कर देंगे कि वो वापस आने की चेष्टा ही नहीं करेगा, इच्छा ही नहीं करेगा इस संसार में। और आश्वासन है भगवान का इस तरह से। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि भक्त कैसे वापस आ सकता है, जो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, भगवान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, तो ऐसा भक्त कैसे आ सकता है। तो आज जो हम ये देखते हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर तरह से हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा नहीं होता है। और वहाँ तो क्या, लेकिन हमने देखा कि भौतिक जगत में भी हम अगर भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति तो, या मेरी भक्ति तो इतनी पक्की नहीं है, कच्ची है, लेकिन मैं देखता हूँ कि भगवान इस तरह से हमारे जीवन में मदद करते हैं कि बहुत हमको प्रोत्साहन मिल जाता है। छोटा सा भी कोई कार्य किया भगवान के लिए तो तुरंत उसका कोई हमको प्रतिफल मिल जाता है, या कोई भी थोड़ा कठिनाइयों का सब कोई सेवा होता है उसमें कोई आसानी भगवान पैदा कर देते हैं। इससे देखते हैं कि भगवान इतना हमारे जीवन में वैयक्तिक रूप से इन्वॉल्व है। तो कोई एकदम संसार के किसी कोने में कोई एक भक्त है, उसके जीवन में इतना भगवान इन्वॉल्व रहते हैं, तो इतने भगवान कृपालु हैं, तो उससे बहुत हमें सहा आता है और विश्वास बढ़ता है कि देखिए वही यही एक हमारा आश्रय है, भगवान की भक्ति, जो भगवान के भक्तों के साथ रह के कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई आपका कोई टीका हो, कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए प्रभु जी।
भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो भौतिक इच्छाओं को पूरा ना करने पर उसके अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। वो फ्रस्ट्रेशन एक अंदर मत होते हैं ना कि एक हृदय में संस्कार छपते चले जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन का रूप जो होता है, वो फ्रस्ट्रेशन इतने गहरे हो जाते हैं तो वो भक्ति से विमुख हो जाता है। कुछ समय बाद कहते नहीं, मेरी मैं भक्ति भी नहीं कर पा रहा और मेरी इच्छाएँ भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उसको कैसे टॉलरेट करें और कैसे हम उस भक्ति में कैसे स्थित रहें।
ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है कि भौतिक इच्छाएं हमारी तो अभी रहती हैं भक्ति करते करते, और भक्ति में आके भौतिक इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो धीरे धीरे उसमें बढ़ती जाती है, संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और कभी कभी भक्ति छोड़ के जा सकता है। तो उसको कैसे हमको टॉलरेट करना चाहिए और फिर उससे शुद्ध होना चाहिए। एक तो ज्ञान से कि भगवान अलग, मतलब टॉलरेट जो है हमको ज्ञान से करेंगे, और दूसरा मैं अभी बताता हूँ, उससे पहले क्या करते हैं भगवान भक्तों के साथ ये देखना चाहिए कि हम जब भी भौतिक इच्छाएं होती है उसको पूरी करने की चेष्टा करते हैं, तो जब उसमें बाधा आ जाती है, पूरी नहीं होती, समझ लेना चाहिए कि भगवान का इशारा है कि भगवान नहीं चाहते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि भगवान इससे अप्रसन्न है, नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि इनको छोड़ दिया जाए। तो कैसे छोड़ें कि जिससे हमको भक्ति में और उत्साह मिल जाए, भक्तों का संग होता है उससे उत्साह मिलता है, या भक्ति में किसी चीज़ में हमें रस आता है वो चीज़ हमें अधिक करनी चाहिए जिससे हमारा मन उसमें लग जाता है। भगवान के नाम का जप है, कीर्तन है, कभी भक्तों की सेवा करने की इच्छा होती है, तो जो चीज़ भक्ति में अच्छी लगे और अधिक कीजिए उसको। और विचार करना चाहिए कि ये भौतिक इच्छाएँ क्यों आ गई ज़्यादा, क्या हुआ, कुछ दिनों तक मैं पढ़ाई नहीं किया, भक्तों का संग नहीं किया क्या, या असत्संग कर लिया मैंने, गलत लोगों का संग कर लिया या गलत चीज़ों को देख लिया, ऐसा आ गया, ये एकाएक बढ़ गई है इस तरह से, तो फिर मुझे उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इशारा भगवान ने कर दिया कि ये अच्छा नहीं है, इसलिए भगवान ने उसमें बाधा डाल दी है। तो वो समझ के हमें तुरंत तत्पर हो जाना चाहिए कि हमें भक्ति और सुदृढ़ करनी है, और ऐसा करने लगेंगे ना तुरंत हम देखेंगे भगवान हमें ऊंचा स्वाद दे देते हैं, और भौतिक इच्छा की जो आसक्ति है वो कम हो जाती है। ये प्रैक्टिकली जीवन में होता है, लेकिन क्योंकि इंप्रेशन इतने डीप होते हैं, बार बार वो आ जाते हैं समय समय पे, तो जब जब आते हैं तब तब ऐसा करना चाहिए, और रेगुलरली भक्ति रेगुलर अपनी शक्तिशाली तरह से करेंगे, अच्छी तरह से गंभीरता से करेंगे, तो धीरे धीरे ये इंप्रेशन भी कम होते जाते हैं, ऐसा नहीं कि उतने ही रहते हैं। ये जो देखा जाए, हमारा भौतिक विचार साइनोसॉइडल वेव की तरह आते हैं, कभी एकदम विचार आ जाता है, लगता है कि मैं एकदम शुद्ध भक्त हो गया, कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे मैं अभक्तों से भी गिरा हुआ हूँ। तो वो पहले तो बहुत ज़्यादा बार बार आता है, लेकिन भक्ति करते करते धीरे धीरे वो कम आता है और थोड़े समय के बाद आता है। ऐसा ऐसा वेव का लेंथ ऐसा बढ़ता जाता है, उस तरह से ऐसा होता है, और स्ट्रेट नहीं, वो ऊपर जाता रहता है वेव लेंथ। ऐसा ऐसा तो प्रगति भी कर रहे हैं और धीरे धीरे वो छाप कम होते जाते हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहना चाहिए हमें। वैसे वातावरण जहाँ पे हम कमज़ोर हो जाएंगे नहीं जाना चाहिए, या चीज़ों या लोगों के संग में जो हमको कमज़ोर कर देंगे भक्ति में, बहुत ही इच्छाएँ बढ़ा देंगे, उनसे अलग रहना चाहिए हमको। तो धीरे 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 ये इच्छाएँ कम होती जाएंगी और हमारे जो रुचिकर चीज़ें हैं भक्ति में वो करेंगे, वो बढ़ते जाता है। तो इस तरह से हम अपने आप को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और किस समय बहुत ही मन विचलित हो गया, बेस्ट है आजकल टेक्नोलॉजी का आशीर्वाद है, एक बटन हमारी सुरक्षा से दूर है। बस मोबाइल का एक बटन दबा दीजिए, जिस भक्त से आपको प्रेरणा मिलती है उसको कॉल कीजिए, बस भले ही आप उससे अपने समस्या का चर्चा भी ना करें, उसके द्वारा सिर्फ हरे कृष्ण भी सुनेंगे तो बस पूरा मन भौतिक चीज़ों से उड़ जाता है। क्योंकि उस समय जो आंधी आती है उससे बचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाद में जो है कि उस समय आदमी विचलित हो जाता है। तुरंत उस समय भक्त को कॉल कीजिए, हरे कृष्ण बोल जी कैसे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा भी पूछा, वो बस दो शब्द ही बोलते हैं ना, मन पूरा शांत हो जाता है। बस वो मोबाइल लीजिए, एक बटन दबा के कॉल कर दीजिए, सोचिए मत वो क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे, कुछ भी हो, बोले प्रभु जी दो मिनट में कॉल कीजिए, बिजी है बोलना, पर वो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, जस्ट दो मिनट बात करनी, वो तुरंत बात करेंगे आपसे। इतना पास है, क्योंकि जब मन बहुत ही विचलित हो जाता है तो एक जो है वरिष्ठ भक्त जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं उनका संग हमें तुरंत उससे हम उनके उनमें जो कृष्ण शक्ति है वो हमको तुरंत ऊपर उठा लेती है। अगर साक्षात मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट चर्च बात कर लीजिए उनसे, और फिर बाद में हमें जब या फिर जो सेवा में रुचि है वो करके, और अलग अलग चीज़ जो जैसे हम बार बार सुनते हैं वैसा करके करना चाहिए, उससे हम पद पे रहेंगे। और ये है, मैं जस्ट बता रहा था कि अगर कोई बहुत आसक्त रहता है तो भगवान उसको बाधा डालते हैं उसके भक्ति में, जिस उसके भौतिक इच्छा में, जिससे वो छोड़ सकता है। लेकिन अगर कोई फिर भी बहुत आसक्त रहता है, छोड़ता ही नहीं है भौतिक इच्छा, छोड़ता ही नहीं, तो भगवान फिर क्या करते हैं, उसको भौतिक इच्छाएँ दे देते हैं, लेकिन देने के बाद उसको उससे फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, और फिर उसको भौतिक इच्छा तो मिल गई, वो सोचता है कि हाँ अभी बहुत कुछ आनंद आने वाला है, लेकिन जो है वो लेता है और उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फिर देखता है कि एक्चुअली इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी तो उसने क्लियर भगवान को नो बोल दिया है, भक्ति को नो बोल दिया है, इच्छा तो अभी आ गई और उसका तो अभी भौतिक जीवन ही चालू हो गया है, और देखता है फ्रस्ट्रेशन आ गया, फिर बोलता है अरे इसमें फ्रस्ट्रेशन ही है, भक्ति में आने से पहले यही रियलाइजेशन, अभी भी यही रियलाइजेशन है, चलो भगवान के पास वापस मुड़ जाते हैं। तो भगवान इस तरह से करते हैं और फिर उनके चरणों में ही वास्तव में असली आनंद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। ठीक है, एक ही प्रश्न है सर।
जैसे आपने बताया मुझे प्रश्न का उत्तर देते हुए, जैसे जब बिल्कुल उल्टा मतलब इसका एक पहलू है उसके बारे में थोड़ा सा अगर खुलासा कर रहे हैं, आपने बताया कि जब हमारे साथ ऐसा होता है कि मतलब गाड़ी ठीक नहीं चल रही होती और उस वक्त जो है ऐसे फ़ोन करके जो आप अपने आप को बचा सकते हैं, जो वरिष्ठ भक्त हो आपको उठा लेते उस वक्त, एटलीस्ट उस वक्त के लिए जो है हम बच जाते हैं, तो जी ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए? कि कई बार ऐसा उल्टा भी होता है कि भक्त जो है आपसे मान लीजिए इस प्रकार से जो है जब वो थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं वो फ़ोन करते हैं और आप उनको उठा लेते हैं, पर वो फिर उसको मेंटेन करने के लिए फिर कोई श्रवण भी, क्योंकि मानसिक स्थिति जो ख़राब होती है वो मन ज़्यादा विचलित इसलिए होता है, ऐसा आपने बताया, क्योंकि उनका जो बेसिक जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो ठीक नहीं, खुराक ठीक नहीं है, तो इसीलिए जो है बार बार ऊपर नीचे हो रहा है और फिर किसी तीसरे व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भक्त लोग ऐसा मतलब जिसके साथ ऐसा हो रहा हो कि यानी कि जो बार बार वो फ़ोन को रिसीव कर रहा हो, कभी इसका फ़ोन आ रहा है मेरे को उठा लो, उसका फ़ोन आ रहा है मेरे को उठा लो, आपने माला करी रीडिंग करी हाँ मुझे कर लूँगा, बट तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए?
किसको? जिस जो खुद डाउन है उसको क्या?
नहीं, जो उठाते उठाते थक गया है.
उठा उठा के थक गया. एक्चुअली उसको फर्स्ट थिंग है कि हमें ये बहुत गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से मैं उसके अभी भौतिक इच्छाएं उसके हृदय में स्पर्श कर गई हैं और घर कर गई हैं. तो उसे ये विचार करना चाहिए कि किस तरह से मैं उसके हृदय में प्रवेश कर सकता हूँ. क्योंकि भक्ति भी जो होती है एक स्टीरियोटाइप नहीं है, अर्थात एक ही तरह से किया जाता है, ऐसा नहीं होता है. तो उसको चिंतन कि क्या मेरा व्यवहार उसके हृदय को स्पर्श कर सकता है, या तो मेरा या किसी और का, यानी मैं ही कारणीभूत हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है. जैसे यहाँ पे मैं कृष्ण का ही उदाहरण दे रहा था, भगवान कृष्ण का, कि पहली बार प्रॉब्लम निकालने के लिए उन्होंने गीता बताई, लेकिन दूसरी बार वो खुद अपना वचन तोड़ दिया. यानी अलग तरह से उन्होंने व्यवहार किया, क्योंकि भगवान का विचार था कि मेरे किस व्यवहार से मैं उस भक्त के हृदय को स्पर्श कर सकता हूँ, उसका विश्वास मैं जीत सकता हूँ, ये देखना चाहिए. और साथ में हमें थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए, क्योंकि समय लगता है ऐसे चीज को. कभी एक दिन, दस दिन, महीना, साल, दो साल, चार साल, छः साल, दस साल लग सकता है. लेकिन अगर हमने इस तरह से भक्त के साथ संबंध रखा कि वो भक्त जानता है कि मैं कुछ भी हूँ, लेकिन ये भक्त मेरे से प्रेम करते हैं, वो विश्वास ही उस भक्त को वापस भक्ति में लेके आ जाता है. अगर उसे लगा कि भक्त मेरे से नाराज हैं, तो उसे बहुत संकोच होता है वापस आने के लिए. तो हमें भले लगे कि क्या है, कितना मदद किया, फिर भी वो भक्त नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, भले हमारे मन में कुछ भी लगे, लेकिन कभी भी हमें जो है वो नाराजगी उससे व्यक्त नहीं करनी है, क्योंकि उसका वो स्तर है कि वो उसको नहीं ले पाएगा. इसलिए जितना प्रेम, जितना हम दे सकते हैं उस भक्त को, उतना हमें देना चाहिए उस समय पे. उसके हृदय में वो जा रहा है भौतिक आसक्ति के कारण, भले वो इतना धैर्य नहीं बांध पा रहा है, लेकिन वो छाप पड़ रही है कि भक्त कितना कर रहे हैं मेरे लिए, कितना कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं. और भगवान भी है, कुछ समय भगवान भी उसके जीवन में कुछ करेंगे, जिससे कि क्या होगा, वो वापस आ जाएगा. तब ये तो इस्कॉन के हिस्ट्री में ही देखते हैं, हयग्रीव महाराज का उदाहरण देखते हैं, वो तो आए नहीं, लेकिन जब जीवन में प्रॉब्लम आए तो उनको पता चला कि एक ही जगह है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, जो लोग मुझे चाहते हैं, मेरे पास कुछ भी ना हो तो भी, वो है भक्त. इसलिए वो भक्तों के पास आ गए. इसलिए हमें इसमें तत्पर रहना चाहिए, या तो मैं या कोई और भक्त जिसका उनका ज़्यादा संबंध, उनको भेजेंगे इस तरह से. ओके, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंद जय. हरि हरि. तो वास्तव